समय सार लेक्चर नंबर 8, 4, 6 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धे नमो सिद्धाणं नमो
आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो रोये सौवसाहूणं
नमः
समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गदिं पते
ओच्छामि समयपाहुड
मिनमो सुदकेवली वणिदम्।
यह कुंदकुंद आचार्य भगवान के समय सार में जो 47 शक्तियां बताई गई हैं, उसमें से हम अभी विभुत्व शक्ति को देख रहे हैं। ये विभुत्व शक्ति को देखते हुए हम पृष्ठ क्रमांक 52 पर आए हैं, और वहां ऊपर का जो पहला पैराग्राफ बड़ा है उसके बाद दो लाइन है, वहां एक प्रश्न है। वहां कह रहे हैं ये विभुत्व शक्ति क्या है, तो कहते हैं कि विभुत्व शक्ति याने व्यापक शक्ति, सर्व व्यापक शक्ति, याने ये जो विभुत्व नामक शक्ति है उसका रूप अन्य गुणों में है, अन्य पर्यायों में है, इसलिए वह द्रव्य में भी व्यापक है, गुण में भी व्यापक है और पर्याय में भी व्यापक है। ऐसी बात जब होती है तब कह रहे हैं वो व्यापकपना का रूप अन्य गुणों में है, इसलिए अन्य गुण भी व्यापक रूप से हैं। ख्याल में आया?
यानी ऐसा लेना आत्मा में विभुत्व शक्ति है तो आत्मा अपने सभी गुणों में व्यापक है,
ऐसा भी
तो ऐसा भी लेना है और ऐसा भी लेना। और आत्मा व्यापक है तो उसका प्रत्येक गुण भी व्यापक है, ये बात ऊपर से तीसरी लाइन में लिखी है।
हाँ बताओ बताओ।
देखो दूसरे ना ज्ञान रूपी एक भाव, वो तो उसका दृष्टांत दिया। यहाँ तो कहते कि आत्म द्रव्य के द्रव्य में ही व्यापक ये जो विभुत्व शक्ति है, तो ये जो आत्मा है वो अपने सर्व भावों में व्यापक है। और ये यहाँ तीसरी लाइन में लिखे आत्मा विभु यानी सर्वव्यापक है, 52 पृष्ठ पर तीसरी लाइन में अपने विभुत्व स्वभाव के कारण आत्मा विभु है तो सर्वव्यापक, सर्व मैंने अपने गुण पर्यायों में व्यापक है आत्मा। आगे कहते आत्मा ना प्रत्येक गुण पन विभु अर्थात सर्वव्यापक से, जैसे आत्मा सर्वव्यापक है अपने सभी गुणों में व्यापक है, वैसे उसका प्रत्येक गुण भी सभी में व्यापक है। उसमें हमने एक कहा रूप सभी में ऐसा लिया। और ये जो सर्वव्यापक है ना दूसरे पैराग्राफ में भी तीसरी लाइन में लिए अही तो पोताना सर्व अनंता गुण पर्याय में व्यापक एवो आत्मा विभु छे सर्वव्यापक है। हाँ क्योंकि ये जितनी शक्तियां है जैसे ज्ञान गुण भी लिया सर्वज्ञत्व शक्ति भी लिए एक ही गुण के और उसके हाँ विशेषताओं के साथ अन्य अन्य शक्तियां यहाँ ली है, तो विभु ने अपने अनंत गुण पर्याय उमा व्यापक ऐसे आत्मा का ही स्वभाव है, उस स्वभाव को यहाँ विभुत्व शक्ति कही। तो आत्मा में है तो आत्मा के प्रत्येक गुण में भी है, तो उसमें हमने एक गुण का रूप दूसरे गुण में देखा, वो भी है, उसको भी सिद्ध करना है, परंतु मूल में आत्मा में ऐसी शक्ति है कि आत्मा अपने अनंत गुणों में व्यापक है।
तो जब उसको विभू कहा कि आत्मा विभू स्वभावी है ऐसी बात बताई, तब तो प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा। अभी ये दो पैराग्राफ के बाद वाला जो प्रश्न है, तो स्तुति मा, यानी कौन सी स्तुति, वक्तामर स्तोत्र आदि मा, भगवान ने विभू कया छे ने, हे नाथ आप विभू छो एम कहू छे ने, हा कया छे, पन ए तो आत्मा नी विभुत्व शक्ति नी अपेक्षा है कया छे, भगवान काई लोका लोक मा व्यापी रहा छे अने माटे ते विभू छे एम नथी, ए तो विभुत्व स्वभाव नी प्रकटता थता पोताना सर्व अनंता गुण पर्याय मा भगवान व्यापक छे, ए अपेक्षा है भगवान आप विभू छो एम कहू छे। यानी जो कहने में आया जो है उसके पीछे मुनिराज का कौन सा प्रयोजन है, किस अपेक्षा से कह रहे, वो बात हमें ध्यान में लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि पोताना सर्व अनंता गुण पर्यायोमा भगवान व्यापक छे, એટલે आत्मा पोते व्यापक छे, ए अपेक्षा है भगवान आप विभू छो एम कहू छे। भाई लोकालोक मा व्यापे एवं कई आत्मा नु विभुत्व नथी। ये जो कह रहे हैं ना कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह भगवान जो है उनके वह तो पूरे लोकालोक में व्याप्त है। तो देखो अभी तो हमने तो क्या देखा कि आत्मा जो है वह असंख्यात प्रदेशी है। तो आत्मा तो अभी फिलहाल वो असंख्यात प्रदेश है, वो कितने प्रदेश में फैले हुए, शरीर प्रमाण। मुझे लगा आप प्रश्न पूछ रहे हैं। शरीर प्रमाण जितना है उतना उसके असंख्यात प्रदेश है। तब अगर हम ऐसा मानेंगे कि वो पूरे लोकालोक में व्याप्त है, तो फिर ऐसा हो गया कि शरीर के बाहर भी गया ना वो कायम के लिए। और गुण कहाँ है, तो वो जहाँ शरीर है वहां पर, क्योंकि उसमें आत्मा हमने माना था, तो वो गुण भी एक जगह रह गए और आत्मा भी बहुत लंबा फैल गया, ऐसा भी होगा। इसलिए यहाँ क्या कह रहे कि लोकालोक में व्यापे एवं कहीं आत्मा नु विभुत्व नथी, पन पोता मा रहीने लोकालोक ने सहज जानी ले, क्योंकि वह सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हुई ना, एवं आत्मा नु विभुत्व छे। आहा हा, केवल ज्ञान पोता मा रहीने एटले प्रसरी ने आखा लोकालोक ने जानी ले तेवु एनु विभुत्व छे, आवी बात छे, समझाणो काय, क्योंकि वो केवल ज्ञान रूपी पर्याय, उसमें भी विभुत्व शक्ति का रूप है ना। अहो आ विभुत्व शक्ति तो अजब छे, विभुत्व स्वभाव वडे जेम आत्मा विभु छे तेम तेना अनंत गुण प्रत्येक विभु छे, अनंत गुण प्रत्येक विभु छे, ज्ञान विभु, दर्शन विभु, चारित्र विभु, एम दरेक गुण विभु छे, गजब छे ने, जेम अस्तित्व गुणती बधा अनंता गुण अस्तित्व रूप छे, तेम विभुत्व गुणती बधा विभू स्वरूप छे, जेम अस्तित्व गुण व्यापी ने बधाने अस्थि रूप करे छे, तेम विभुत्व गुण व्यापी ने बधाने विभुत्व अर्पे छे। अहो आवी पोतानी विभुत्व शक्ति ने जाणी, आ शक्ति अने आ शक्तिवान द्रव्य एवा भेद नु लक्ष्य छोड़ी, यानी ये गुण और ये गुणी, ऐसा गुण गुणी का भेद भी छोड़कर अभेद अखंड एक शक्तिवान द्रव्य ऊपर दृष्टि करवी, ते सम्यक दर्शन छे। आ धर्म प्रकट करवानी रीत छे भाई, शक्तिओनो भेद छे ते जाणवा माटे छे, पण सम्यक दर्शन प्रकट करवा माटे तो भेदनु लक्ष्य मटाडी अभेद अंतरदृष्टि करवी, अभेद नी अंतरदृष्टि करवी, ए साधन छे। देखो यहाँ दो बातें हमको बहुत क्लियर बता रहे हैं कि हमें ये शक्तियां जो है अनेक प्रकार की, यहाँ अभी यहाँ तो 47 शक्ति हैं, इनका हमें ज्ञान क्यों करा रहे हैं भाई? हमें तो अभेदात्मा का अनुभव करना है और आप उसमें भेद क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तो भेद में जाएंगे तो हमको तो राग द्वेष होगा, कहते हाँ बराबर है, लेकिन सही स्वरूप समझने के लिए भेद करके समझाए बिना नहीं समझते हैं। इसलिए कहते शक्तियों भेद जे छे ते जानवा माटे छे। अभी उन्होंने यहाँ बाइफरकेशन किया, जानने के लिए तो सभी जानना योग्य है क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही जानना रूप है, लेकिन वह जो भेद रूप जानना है वह तो जानने के पुरता रखना है, और हमें श्रद्धान करना है वह तो अभेद का करना है। इसलिए क्या कहा देखो, शक्ति नो भेद छे जानवा माटे छे, पन सम्यक दर्शन प्रकट करवा माटे, यानी श्रद्धा में सही रूप लाने के लिए क्या करना चाहिए, भेद नु लक्ष्य मटाड़ी अभेद नी अंतरदृष्टि करवी, यानी यहाँ ज्ञान और श्रद्धा इसमें अंतर करके दोनों का आस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं व्यू पॉइंट एंगल, जिस एंगल से हमें देखना है समझना है, वो कह रहे तो एज साधन छे, यानी साधन तो एक ही है, क्या है कि अभेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद में लीनता करना, जो द्रव्यमा एटले आत्म वस्तुमा सर्वशक्तिओ अक्रम अर्थात एक साथे रहेली छे, अने पर्यायो क्रमसर एक पची एक सुनिश्चित थाय छे। आहा हा, ज्ञाननी पर्याय क्रमबद्ध एक पची एक थाय छे, तेम दरेक गुणनी पर्याय क्रमबद्ध एक पची एक थाय छे। हवे केटला गामा तर्क करे छे के केवल ज्ञाननी अपेक्षाए तो दरेक पर्याय नियत क्रमबद्ध छे, ए वात बराबर छे, परंतु श्रुतज्ञान अल्प छे, माटे श्रुतज्ञाननी अपेक्षाए पर्याय क्रमबद्ध थाय ए वात बराबर नथी। बाह्य साधनों वडे जेवो पुरुषार्थ करे तेवी पर्याय थाय क्रमबद्ध नहीं। खानिया तत्व चर्चा में आवो तर्क थयेलो, ये आप जानते हैं क्या? जयपुर के बिल्कुल छोटे से अंतर, मतलब 6-5 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ एक खानिया नाम का एक गांव है, अभी उसका नाम चूलगिरी है। जयपुर के पास 5-6 किलोमीटर के अंतर पे एक खानिया नाम का गांव है, और वहाँ अपना जैन दिगंबर मंदिर है। वहाँ पर दो अलग अलग भिन्न पार्टी वाले लोग आए थे वाद विवाद के लिए। वाद विवाद यानी पहले क्या होता था कि ऐसे सामने सामने, जैसा हम बोलते हैं ना सवाल जवाब, वैसा एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करके वहाँ का वहाँ निर्णय करते थे। लेकिन क्या होता था, मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, टाइम पसार हो गया ना बहुत, तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, इसलिए लिखित रूप से। तो ये प्रश्न लिखने वाले इतना लंबा लंबा 6-8-15 पेजेस का तो प्रश्न होता था, तो प्रश्न पढ़ते वो खानिया तत्व चर्चा नाम की किताबें भी बाहर पड़ी है, वो हम पढ़ रहे हैं उनके प्रश्न अपोजिट पार्टी वालों के, तो अपने को ऐसा लगने लगते हैं अरे इनकी बात तो सही है। और फिर बाद में जब उत्तर देते हैं तो वो भी लिखित रूप से देना, ऐसा करके वो खानिया तत्व चर्चा जहां अभी अभी फिलहाल चूलगिरी नाम का एक वहां स्थान निर्मित हो रहा है, वो पहाड़ पे है और उसके नीचे तड़िए में ये खानिया मंदिर है, जहां बहुत बड़ा ऐसा उसका गर्भ जिसको कहते हैं ना, यानी बैठने की मतलब गर्भ, मंदिर के अंदर भगवान एक तरफ होते हैं आगे जगह रहती है, वैसा बहुत बड़ा है और वहाँ ये बात होती थी। ये अभी अभी की बात है, कुछ 50-60 साल के आसपास की, तो वहाँ की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, ये खानिया नाम आया ना, ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ ऊपर से पांचवी लाइन है। खानिया तत्व चर्चा में आवो तर्क थयेलो, क्या तर्क थयेलो, फिर से पढ़ते हम, केवल ज्ञाननी अपेक्षाए तो दरेक पर्याय नियत क्रमबद्ध छे, अभी चौथी लाइन पढ़ रहा हूं, ते वात बराबर छे, परंतु श्रुत ज्ञान अल्प छे। अभी केवल ज्ञान में तो जो कुछ क्रमबद्ध है वो तो उनको जानने में आ रहा है, परंतु श्रुत ज्ञान अल्प है माटे श्रुत ज्ञान ने अपेक्षा है पर्याय क्रमबद्ध थाय ए वात बराबर नथी। बाह्य साधनों वड़े जेवो पुरुषार्थ करे तेवी पर्याय थाय क्रमबद्ध नहीं। यानी हमने पुरुषार्थ क्या किया, पानी में शक्कर की जगह नमक डाला तो पानी खारा हुआ, बाह्य साधन नहीं, नहीं हमने उसमें शक्कर डाली तो पानी मीठा हो गया। तो ये कह रहे कि हम जैसा बाह्य साधन मिलाएंगे या उसके कारण से जो होगा वो उस तरह से पर्याय पलटेगी, क्रमबद्ध नहीं, क्योंकि हम शुद्ध ज्ञानी है ना, ऐसा उन्होंने तर्क किया। वो खानी तत्व चर्चा में आवो तर्क थयेलो छे तेनु समाधान पंडित श्री फूलचंद जी ए बराबर करेलू छे। ये फूलचंद जी शास्त्री बिल्कुल सही, जिसको हम कहते स्वामी जी जिस तरह का निरूपण करते थे उसी ढंग से उसी तरह से उन्होंने भी अपने तरफ से बहुत अपने तरफ हम कहते हैं उन्होंने सही बात।
कोई सोनगढ़ की पार्टी नहीं थी,
कोई नहीं था, ये बात विशेष है।
फिर भी ये जो फूलचंद जी शास्त्री कोई स्वामी जी के शिष्य नहीं थे, तो ओरिजिनल उनका ही अपना ही अभ्यास था, बिल्कुल सही था। उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ वगैरह लिखे है। तो ये जो फूलचंद जी शास्त्री है उनकी पार्टी ने जो कथन किया था तो बराबर उसको उन्होंने जवाब दिया है, सही जवाब दिया।
तो लिखते हैं समाधान पंडित श्री फूलचंद जी ए बराबर करेलू छे। अरे भाई शक्ति अने शक्तिवान द्रव्य एवा भेद नु लक्ष्य मटाड़ी अभेद एक त्रिकाड़ी न्यायिक स्वभाव सन्मुख थाय त्यारे सम्यक दर्शन प्रकट थाय छे। आने त्यारे साथे ज भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट थाय छे। आ भाव शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान ने अनुसरे छे। तेथी शुद्ध ज्ञान मा पण सर्व पर्यायो क्रमबद्ध थाय छे एवो निर्णय होय छे। आ हा केवल ज्ञान मा जे वस्तु व्यवस्था भासी तेनाथी अन्य प्रकार एटले विपरीत वस्तु व्यवस्था शुद्ध ज्ञान मा भासे तो ते शुद्ध ज्ञान केवू, ते शुद्ध ज्ञान नथी ए तो मिथ्या ज्ञान ज छे। क्योंकि यहाँ उन्होंने कौन सी दलील की कि जो शुद्ध भाव शुद्ध ज्ञान है वह केवल ज्ञान को फॉलो करता है, अनुसरे छे। अगर उसमें केवल ज्ञान में कोई अलग बात भाषित हो रही है और शुद्ध ज्ञान में कोई जुदी भाषा बात भाषित हो रही है तो वो सच्चा शुद्ध ज्ञान नहीं है। हमें तो आई वर्षों थी कही है छे। देखो अभी वहां जो बात बताए वो हम कितने सालों से कह रहे हैं, ऐसा स्वामी जी बताते हैं। प्रत्येक द्रव्य नी प्रति समय जे जे पर्याय थाय छे ते क्रमबद्ध क्रम नियमित प्रकट थाय छे। प्रत्येक समय जे पर्याय थवा योग्य होय तेज क्रम नियमित प्रकट थाय छे तेमा काई आगू पाछू के आडू अवळू थवानो सवाल ज नथी। यानी उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल होवे ऐसी बात ही नहीं हो सकती है। भाई आ तो भगवान केवड़ी नू फरमान छे, जेम मोती नी माळा मा जा जा जे जे मोती छे ते त्या त्या प्रकाशे छे। प्रकाशित जी यानी वहाँ वो है, ऐसा समझ लो अभी आप, वो चमकता है ना मोती, इसलिए तेने आगा पाछा करवा जाए तो माला टूटी जैसे। यानी मान लो कि एक माला में 108 मोती है, वो पांच नंबर की जो मोती है उसको 25 नंबर से हटाकर पांच वाला के साथ में बिठा दो या पांच की जगह वो हटा दो और वो पांच वाला 25 की जगह ले जाओ तो कहते हैं माला जब तक नहीं टूटती ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह कह रहे हैं कि ये जो पर्याय का जो सिलसिला चल रहा है अनादिकाल से अनंत काल के एक के बाद एक के बाद एक के बाद की जो पर्याय है वो पर्याय कोई आगे आ जाए और कोई पीछे रह जावे या उसको फिर पीछे डाल दो, ऐसा हो ही नहीं। क्योंकि द्रव्य जो है वह द्रव्य से खंडित नहीं होता है, क्षेत्र से खंडित नहीं होता है, काल से खंडित नहीं होता है, भाव से भी खंडित नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ हम आगे पीछे करने जाएंगे तो द्रव्य अखंड नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं जेम तीसरी लाइन लास्ट पैराग्राफ, जेम मोती नी माला मा जा जा जे जे मोती छे ते त्या त्या प्रकाशे छे तेने आगा पाछा करवा जाए तो माला तूटी जशे। तेम दरेक द्रव्य नी प्रत्येक पर्याय त्रणे काले जे तवानी छे तेज प्रकट थाय छे तेमा आगू पाछू करवा जाए तो पर्याय नो क्रम तूटी जशे अने अखंड द्रव्य सिद्ध नहीं थाय। इसका उन्होंने सरवाड़ा क्या निकाला, अर्थात मिथ्या ध्वज रेशे। कोई वड़ी कहे छे, ये कोई वड़ी कहे छे के समझ लेना कि कोई मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। क्रमबद्ध नो अर्थ एक पची एक था एम बराबर, पर अमुक आज था एम नहीं, परंतु एवी वस्तु स्थिति नथी भाई। द्रव्य नी त्रिकाळवर्ती प्रत्येक पर्याय नो क्रम नियत एटले निश्चित ज छे। कोई पर्याय कदी गाड़ी आवड़ी थई शके नहीं, पर दरेक पर्याय पोताना क्षणिक उपादान नी योग्यता अनुसार जे काळे जे थवा योग्य होय तेज ते काळे निश्चित प्रकट थाय छे। जो आत्मामां एक विभुत्व शक्ति छे एनी आई वात छे। आ विभुत्व शक्ति पूरा द्रव्यमां अने तेना अनंत गुणोमां व्यापक छे। द्रव्यनी अनंत शक्तिओ क्रमबद्ध पर्यायपणे परिणमे छे। बहिर्दृष्टिने तेनो अंदर स्वीकार थतो नथी, पण एक अभेद शुद्ध अंतस्तत्वनी दृष्टि करता ज पर्याय क्रमबद्ध थाय छे, तेनो यथार्थ निर्णय थाय छे। अमे तो आ वात प्रवचनोमां विस्तारथी करी छे। प्रश्न तो आप छापीने बहार पाड़वानुं कहो तो वेली प्रसिद्ध थाय, या आपने जो बात बताई तो आप फरमान निकालो कि भाई छापो करके। अमे कोई ने काई कहता नथी, तत्व विचाराने स्वाध्याय करवा सिवाय बीजा कोई काम में अमे पड़ता नथी। शुं छापू ने बहार पाड़वू ए समाजनुं काम छे, अमारुं दे काम नहीं। कितना कन्फर्म है देखो। आ विभुत्व नामनी शक्ति सर्वशक्तिओमां व्यापे छे, द्रव्य गुण पर्याय त्रणेयमां व्यापे छे। तेथी द्रव्य विभु गुण विभु अने वर्तमान पर्याय विभु छे। सूक्ष्म वात छे प्रभु, आ ज्ञान स्वभाव विभु छे अने ज्ञाननी वर्तमान दशा विभु छे। ज्ञाननी क्रमसर पर्याय सुनिश्चित जे थवा योग्य होय तेज प्रकट थाय छे, अने तेनी साथे अनंत गुणनी पण ते समय सुनिश्चित जे पर्याय प्रकट थवानी होय तेज प्रकट थाय छे। अनंत गुणनी पर्यायमां पण आ विभुत्व गुण व्यापे छे। त्यारे कोई वळी कहे छे के क्रमबद्ध पर्याय मानवाथी नियत एटले नियतवाद थई जाय छे। अरे भाई, जेम द्रव्य अने तेनी शक्ति नियत छे अने निश्चित छे, तेम पोतानी क्षणिक उपादाननी योग्यता अनुसार समय समय प्रकट थती दरेक पर्याय पण नियत ज छे। याने प्रत्येक पर्याय में उस समय की उपादान शक्ति है ना, उपादान मतलब योग्यता है, तो कहते वो भी निश्चित है। क्या कहा देखो, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। जेम द्रव्य अने तेनी शक्ति नियत छे, यानी क्या निश्चित है, तेम पोतानी क्षणिक उपादानी योग्यता ए पण निश्चित छे। एम के छे त्यां ए योग्यता अनुसार समय समय प्रकट थती दरेक पर्याय पण नियत ज छे। जे समय जे पर्याय थवा योग्य होय छे तेज प्रकट थाय छे, पण पर्याय क्रमबद्ध छे एवो निर्णय करनारनी दृष्टि त्रिकाळी शुद्ध एक न्यायक ऊपर जाय छे। त्यारे ज क्रमबद्ध पर्यायनो यथार्थ निर्णय थाय छे। द्रव्य दृष्टि रहित अज्ञानी ने आ वात गोठती नथी। क्या कहते हैं, जिसको द्रव्य की दृष्टि नहीं है यानी श्रद्धा नहीं है, तो उसको ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, कोई निमित्त हमको ऐसा मिल जाए तो कि हमारी पर्याय पलट जाए। तो कहते हैं ते कहे चे श्रुत ज्ञान नी अपेक्षा नियत नथी, पन भाई तारो तर्क यथार्थ नथी। केम के श्रुत ज्ञान नी अपेक्षा पण दरेक पर्याय क्रमबद्ध छे एवो यथार्थ निर्णय सम्यक दृष्टि ने होई छे। भाई जरा दृष्टि सूक्ष्म करी आ समझवा माटे प्रयत्न करवो जो ये आ अवसर छे, अभी क्यारे निकली जाए खबर नहीं के छे। हाँ, पन पंचास थी काई नी गाता 155 मां संसारी जीव ने नियत तथा अनियत एम बन्ने प्रकार नी पर्यायो थया करे छे एम कहू छे ने, गाथा आ प्रमाणे छे।
जीवो सहावणीय दो अनियत गुण पज्जो ग परम समो जदि गुण दिसगम समयम पब्बस्सदि कम बंधादो।
ये उन्होंने पंचास्ती काय की गाथा हमारे सामने पेश की है। तो वहाँ कह रहे हैं संसारी जीव ने नियत तथा अनियत एम बन्ने प्रकार नी पर्याय थया करे छे। तो आप तो कहते कि नहीं, संसारी होवे या मुक्त होवे सब की पर्याय निश्चित है, तो वो ऐसा कैसा? हाँ, पंचास्ती कायनी गाथा 155 मां नियत अने अनियत पर्याय नी वात छे, त्यां स्वभाव अने स्वभाव लीन निर्मल पर्याय प्रकट थाय तेने नियत कहेल छे, अने विभाव पर्याय प्रकट थाय तेने अनियत कहेल छे। अनियत पर्याय एटले ते आगळ पाछळ के आड़ी अवड़ी थाय छे एवो अर्थ नथी। तो क्या है अनियत का अर्थ? तो अनियत एटले स्वभाव में अनवस्थित, एटले जिसको अवस्थित नहीं है वो अनवस्थित, एटले अनेक रूप विकारी पर्याय ते पण जे समय प्रकट थाय ते नियत क्रमबद्ध जो प्रकट थाय छे। गाथा माने टीका मा पण गुण स्वभाव ने निर्मल पर्याय ने नियत कहेल छे। अने विकारी विभाव पर्याय ने अनियत कहेली छे। आई अनियत नो अर्थ पर्याय आड़ी अवड़ी थाय छे एम छे नहीं भाई। पोतानी मति कल्पना थी शास्त्रना अर्थ करे तो केम चाले? न चाले। पानी नो शीतल स्वभाव ते नियत छे, स्वभावलीन शीतल दशा ते नियत छे, अने अग्निना निमित्ते तेनी उष्ण दशा ते अनियत छे। यानी उसमें फेर फेर होता है, इसमें शू था है? लोगों ने पूर्व नो आग्रह हटाग्रह हो एटले आ बेसे नहीं।
देखो ये नियत नए और अनियत नए ऐसे दो नए भी है 47 नयों में, वहाँ यही उदाहरण दिया है। पानी के जो शीतल स्वभाव है उसकी शीतल पर्याय उसको नियत कहेंगे, या उसका स्वभाव जो शीतल स्वभाव है उसको नियत नए जानता है। और पर्याय में अभी जो पर्याय प्रकट हुई है कई सी उष्ण पर्याय, स्वभाव से विपरीत है ना, ये स्वभाव शीतल होते हुए भी पर्याय में उष्णता है उसका अनियत, उसको भी स्वभाव कहेंगे अनियत, फिर तो है वो विभाव भाव, तो उसको जानने वाला वो अनियत नहीं, ऐसी वहां बात है प्रवचन सार के 47 नयों में।
शू था है? लोगों ने पूर्व नो आग्रह एटले हटाग्रह होए एटले आ बेसे नहीं। आ बात पहला हती नहीं, हमना सोनगढ़ी प्रसिद्धि में आवी छे, एटले केटलाक पूर्व केटलाक हटपूर्वक तेनो विरोध करे छे। ए तो जैन तत्व मीमांसा में केवल ज्ञान स्वभाव मीमांसा नामना प्रकरण में पंडित फूलचंद जी आ बाबत कहूं छे के ये अभी जो फूलचंद जी शास्त्री बताए ना वही है ये जैन तत्व मीमांसा, उन्होंने शास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने ये बात बताई है। जार थी सर्व पर्याय सर्व द्रव्यो नी पर्यायो क्रम नियत क्रम नियमित क्रमबद्ध थाय छे, आ तथ्य प्रमुख रूप थी बधानी सामे आयवू छे। त्यार थी विद्वानों द्वारा आवा कुतर्क उठावामां आव्या छे, जेमना मनमां एवू शल्य घर करी बैठू छे के केवल ज्ञान ने सर्व द्रव्यो ने तेनी सर्व पर्यायोनु ज्ञाता मानी लेवाती सोनगढ़ ना विरोध में જે અમારા તરફથી હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે તે કમજોર પડી જશે. તેઓ એ ચાહતા નથી કે આમ જગતમાં સોનગઢનો આમ જનતામાં ખાલી જનતા આમ તો જગત તક લઈ જા રહે આમ જનતામાં સોનગઢનો પ્રભાવ વધે. આથી તેઓ કેવળ જ્ઞાનના સામર્થ્ય પર જ ઉક્ત પ્રકારના કુતર્ક કરવા લાગ્યા છે. પરંતુ આ પ્રકારના કુતર્ક કરતા તેઓ એ ભૂલી જાય છે કે જૈન ધર્મમાં તત્વ પ્રરૂપનાનો મૂળ આધાર જ કેવળ જ્ઞાન છે. એ ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા દિયા હૈ ના, તો એ તત્વ મીમાંસા નામ કા જો કોઈ ઉન્હોને શાસ્ત્ર લિખા હૈ ઉસ શાસ્ત્ર મે વહાં તો ઉન્હોને સહી સહી બતાયા હૈ કે અભી એ સોનગઢ કી બાતે સબ લોગ એક્સેપ્ટ કર રહે હૈ તો સોનગઢ કા પ્રભાવ બઢતે જા રહા હૈ. તો જિને યે બાત સહન નહીં હો રહી હૈ તો ઉન્હોને કેવલ જ્ઞાન કે ઉપર હી પ્રશ્ન ચિહ્ન લગાના ચાલુ કર્યા. ખાનિયા તત્વ ચર્ચામાં પણ પંડિત શ્રી ફૂલચંદજીએ લખ્યું છે કે જીનવાણી અને એક મહાપુરુષ દ્વારા ક્રમબદ્ધ પર્યાયની સ્વતંત્રતાનો ઢંઢેરો પીટવામાં આવ્યો છે. ત્યારથી કેટલાક પંડિતો કેવળ જ્ઞાનના વિષયમાં પણ શંકા કરવા લાગ્યા છે. એ વાત સમજમાં આવી ને? હા બેન. હા, જો કે કેવળ જ્ઞાનના હિસાબે દરેક પર્યાય ક્રમબદ્ધ હોવાનું સ્વીકારે છે, પણ શુદ્ધ જ્ઞાન અપેક્ષાએ પર્યાય ક્રમબદ્ધ છે એ વાત તેમને માન્ય નથી. પણ એ માન્યતા બરાબર નથી. શુદ્ધ જ્ઞાન છે તે કેવળ જ્ઞાન અનુસારી છે. શુદ્ધ જ્ઞાન કઈ કલ્પના નથી. અરે, જીવોને મૂળ વાતની ખબર નથી. શુભ ક્રિયામાં પણ શુભ ક્રિયામાં ધર્મ માનીને બેઠા છે, પણ એવી ક્રિયાઓ તે જીવે અનંતવાર કરી છે. શુભ રાગની ક્રિયાઓ તો બંધનું કારણ છે. શક્તિ અને શક્તિવાન દ્રવ્ય કોણ? શક્તિ અને ગુણ, શક્તિવાન અને દ્રવ્ય જેમ નિયત છે તેમ તેની દરેક પર્યાય નિયત છે. પર્યાય નિયત છે એવો નિર્ણય કરનારની દ્રષ્ટિ ત્રિકાળી ન્યાયક ઉપર જાય છે. આ વિષયનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પ્રશ્ન કહે, પ્રશ્ન વાળા કહે કે ક્રમ આવશે ત્યારે અભ્યાસ કરીશું. તો ઉત્તર ભી બહુ અચ્છા દિયા હૈ કે અભ્યાસનો પુરુષાર્થ કરનારને ક્રમ આવી જાય છે. સ્વામી કાર્તિકેય અનુપ્રેક્ષામાં છે દ્રવ્યમાં કાળલબ્ધિની વાત કરી છે. જે દ્રવ્યની જે સમયે જે પર્યાય થવાની હોય તે જ પર્યાય તે સમયે ત્યાં પ્રગટ થાય એનું નામ કાળલબ્ધિ છે. પ્રવચન સાર ગાતા 102માં દ્રવ્યની જે પર્યાય પ્રગટ થાય તે તેની ઉત્પત્તિની જન્મક્ષણ છે એમ કહ્યું છે. પ્રવચન સાર ગાથા 99માં પણ હારના દ્રષ્ટાંતે કહ્યું છે કે પર્યાય પોતપોતાના અવસરે પ્રગટ થાય છે. નિય સ્વભાવ એવો છે. જ્ઞેય નો સ્વભાવ એવો છે. મેં ક્યાં કહ્યું જ્ઞેય કા જ્ઞેય સ્વભાવ? તો અમને ષષ્ઠી તત્પુરુષ સે બોલા ઓર તુમ ઉસકો તોડ કે બોલ રહે. જ્ઞેય નો સ્વભાવ જ્ઞેય સ્વભાવ. દેખો હમારે નાક ઊંચા હૈ કે નહીં? સહી તો લિખાય જ્ઞેય નો સ્વભાવ. જ્ઞેયનો સ્વભાવ એવો છે કે પોતપોતાની તે પર્યાય પોતાના અવસરે પ્રકટ થાય છે. આમ દરેક પર્યાયની કાળલબ્ધિ છે, પણ તેનું સત્યાર્થ જ્ઞાન કોને થાય કે જે નિજ ત્રિકાળી શુદ્ધ અંતઃદ્રવ્યનો આશ્રય લે તેને પર્યાયની કાળલબ્ધિનું સાચું જ્ઞાન થાય છે. બાકી પર્યાયના ક્રમ સાથે તાકીને જોયા ક્રમ સામે તાકીને જોયા કરે તે તો પર્યાય મૂળ છે, તેને કાળલબ્ધિની ખબર નથી. पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना नवमा अधिकार मा काल लब्धि अने भवितव्य कोई वस्तु नथी एम कह्यु छे तो आमा शुं समझवुं। तो कहते हैं भाई त्या शिष्य नो प्रश्न छे के प्रश्न देखो ये प्रश्न बहुत मार्मिक है। मोक्ष नो उपाय काल लब्धि आवता भवितव्यानुसार बने छे के मोहादिकनो उपशमादिक थता बने छे। यानी दोनों ही प्रश्न इस तरह से पूछे कि वो सामने वाला अटक जाए। क्या कहते हैं कि मोक्ष का जब उपाय होता है तो काल लब्धि और भवित काल लब्धि आने से भवितव्यता के अनुसार होता है, क्या मोह कर्म का उपशम होने से होता है, कि पोताना पुरुषार्थ थी उद्यम करता बने छे। यानी हम स्वयं का पुरुषार्थ उसमें लगाएं तो उससे होगा। ते कहो जो पहला बेकारणों मळता बने छे तो तमे अमने उपदेश शा माटे आपो छो, तथा जो पुरुषार्थ थी बने छे तो सर्व उपदेश सांभळे छे छता तेमा कोई पुरुषार्थ करी शके छे तथा कोई नथी करी शकता तेनू कारण शुं। यानी वो दोनों कारण यानी काल लब्धि और भवितव्यता अनुसार बने, क्या मोह का उपशम होने से बन रहे हैं? तो कहते हैं अगर ऐसा ही होता हो तो ये। और सेकंड अल्टरनेटिव क्या दिया, कोई पुरुषार्थ करे तो उससे होता होगा। तो कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप हमको क्यों उपदेश दे रहे हैं एक बात, और उपदेश तो सब जानते हैं पुरुषार्थ से बनता है ऐसा आप कहोगे तो सब सुनते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी कौन नहीं सुनता है, फिर भी कोई पुरुषार्थ करी सके जे तथा कोई नथी करी सकता, यानी जो पुरुषार्थ करेगा तो सम्यक तो प्राप्त करेगा, जो नहीं करेगा वो रह जाता है, तो ऐसा क्यों? यानी ये इसमें चार बातें तो डाल दी जिसको स्वभाव को छोड़कर, एक काल लब्धि, एक भवितव्यता, एक निमित्त और चौथा पुरुषार्थ। एक कार्य थवामां अनेक कारणों मळे छे, मोक्षनो उपाय बने छे, त्यां तो पूर्वोक्त त्रणे कारणों मळे छे। पूर्वोक्त अभी जो हमने देखे थे वो सारे क्या ये त्रणे कारणों मळता नथी तथा नथी बनतो त्यां ये त्रणे कारणों नथी मळता। पूर्वोक्त त्रण कारणों कया तेमा काल लब्धि वा भवितव्य एटले होनहार तो कोई वस्तु नथी। जे काल मां कार्य बने छे तेज काल लब्धि छे, तथा जे कार्य थयुं तेज भवितव्य, वळी जे कर्मना उपशमादि छे ते तो पुद्गलनी शक्ति छे, तेनो कर्तार्थ आत्मा नथी तथा पुरुषार्थ थी उद्यम करवामां आवे छे ते आ आत्मानुं कार्य छे। माटे आत्मा ने पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करवानो उपदेश आपीए छे। यहाँ एक ही चीज है कि वो पुरुषार्थ कर सकता है, इसलिए पुरुषार्थ करने का यहाँ उपदेश दिया जा रहा है। अबे आ आत्मा जे कारण थी कार्य सिद्धि अवश्य थाय ते कारण रूप उद्यम करे त्या तो अन्य कारणों अवश्य मळेज, कार्यनी सिद्धि पण अवश्य थायज, तथा जे कारणनी कार्य सिद्धि थाय अथवा न थाय ते कारण रूप उद्यम करे तो त्या अन्य कारणों मळे तो कार्य सिद्धि थाय, न मळे तो न थाय। हवे जिनमतमां जे मोक्षनो उपाय कयो छे तेना तुती मोक्ष अवश्य थायज। माटे जे जीव श्री जिनेश्वरना उपदेश अनुसार पुरुषार्थपूर्वक मोक्षनो उपाय करे छे तेने तो काळलब्धि वा भवितव्य पण थई चुक्या तथा कर्मना उपशमादि थया छे त्यारे तो ते आवो उपाय करे छे। माटे जे पुरुषार्थ वडे मोक्षनो उपाय करे छे तेने तो सर्व कारणो मळे छे अने अवश्य मोक्षनी प्राप्ति थाय छे एवो निश्चय करवो। ये सारा का सारा इंटरव्यू इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, वो वहां से क्या कहते प्रश्न के शुरू से यहां तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में की बिल्कुल वहां से उठा के रखा है यहां। जीव आई कारणा सर्व कारणों एक साथ समकाल होई छे एम कहूं छे। जीव पोताना त्रिकाळी द्रव्य स्वभाव सन्मुख नो पुरुषार्थ करे त्यारे जे समकित आदि निर्मल पर्याय प्रकट थई तेज भवितव्य छे अने ते पर्याय तेना स्वकाळे प्रकट थई ते तेनी काळ लब्धि छे। काळ लब्धि अने भवितव्य काई जे निर्मल पर्याय प्रकट थई एनाथी भिन्न वस्तु नथी। वळी तेज वक्ते कर्मना उपशमादि पण स्वयं निमित्तपणे होय छे। आवो सहज योग होय छे माटे પોતાના ત્રિકાળી એક ન્યાયક સ્વભાવની જે દ્રષ્ટિ કરે છે તેને જ કાળલબ્ધિનું સાચું જ્ઞાન થાય છે। બાકી ધારણાથી કાળલબ્ધિ એમ કહે છે, ધારણાથી એને યાદ કરતે કરતે કાળલબ્ધિ એસા બોલે, પણ તેને કાળલબ્ધિની ખબર જ નથી, અર્થાત તેને કાળલબ્ધિ થઈ જ નથી। સમજાનું કાંઈ, यानी जिस समय जो कार्य होता है वही उस काल को काल लब्धि कहेंगे। हम कह रहे हैं ना, अभी आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्यों साहब, काल पाक्यो नहीं, ऐसा बोलते हैं। अरे पर काल से कुछ नहीं होता है, जिस समय वो होगा उस समय वो काल लब्धि है। आवो वीतराग नो मारक वीतराग मार्गना अंतर पुरुषार्थती प्रकट थाय छे, ये मूल बात बताना चाहते हैं। यानी वहां ऐसा दिए कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। जो पंचासी कायनी गाथा 172 मां चारे अनुयोग नु तात्पर्य वीतरागता कहूं छे, त्या टीका मां कहूं छे विस्तार थी बस थाओ जयवंत वर्तो वितरागपणू के जे साक्षात मोक्ष मार्गनो सार होवा थी शास्त्र तात्पर्य भूत छे। आम चारे अनियोगनो सार वितरागता छे। आ वितरागता क्यारे प्रकट थाय के त्रिकाळी शुद्ध एक न्यायिक भावनो आश्रय करे त्यारे पर्यायमां वितरागता प्रकट थाय छे। निमित्त राग के पर्यायना आश्रय वितरागता प्रकट थती नथी। आम चारे अनियोगनो सार आ छे के एक स्वद्रव्यनो एटले निज न्यायक वस्तुनो आश्रय करवो, स्वद्रव्यनो आश्रय कर्या विना पर्यायना क्रमबद्ध पर्यायपनानु साचू ज्ञान थतु नथी। ये मूल बात है, ये बात लोगों को पटती नहीं है, यानी एक्सेप्ट नहीं होती है। क्यों? कि यह जो केवल ज्ञान है वह केवल ज्ञान ने वही जाना है जो क्रम से होना है होता है, और ये केवल ज्ञान ऐसा ही है। ऐसा निर्णय कब होगा कि जब केवल ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा का वो अनुभव करेगा तो कहते कि उसका उसको क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान सच्चा रहेगा, अथवा नहीं अन्यथा नहीं। वही पर्याय ना क्रम ने आड़ो आवड़ो माने तेनु तो परलक्षी बाह्य ज्ञान पन झूठू छे, तो पछी तेने द्रव्य दृष्टि क्या थी प्रकट थाय। पंचास्ती कायमा पर्याय ने अनियत कहेल छे, ત્યાં પર્યાય આડી આવડી કે ક્રમ રહિત આગળ પાછળ થાય છે એવો અર્થ નથી। ત્યાં તો વિકારી ભાવ, વિકારી એટલે વિભાવ પર્યાયને અનિયત કહેલ છે। વાસ્તવમાં વિકારી પર્યાય પણ ક્રમબદ્ધ સ્વકાળે જ પ્રકટ થાય છે। કોઈ પણ પર્યાય આગી પાછી થાય એવો વસ્તુનો સ્વભાવ જ નથી, એવી વસ્તુ જ નથી। એસા કોઈ દ્રવ્ય નહીં કે જિસકી પર્યાય કભી ભી મન મેં આ ચાહે જૈસી હો જાય। दामनगर ना एक शेठ था, तेओ दिगंबर शास्त्रों वाचता पण तेमनी दृष्टि विपरीत हती। तेमने एक बार अमने पूछेलू कि 24 तीर्थंकर 12 चक्रवर्ती ए बधा काळे स्वकाळे थाय छे, माटे काळ लब्धि आवे त्यारे कार्य थाय। त्यारे कह्युं तुं के काळ लब्धि नुं ज्ञान कोने होय छे एटले खबर छे, तो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा नो जे आश्रय करे छे तेने काळ लब्धि नुं साचुं ज्ञान होय छे। बाकी काळ लब्धि सामे मोह ताकीने बेसे तेने काळ लब्धि पाकती ज नथी। सवारे आव्यो हतो ने प्रवचन मां के शुद्धता विचारे ध्यावे शुद्धता में केली करे शुद्धता में थिर भई मगन अमृत धारा बरसे। क्या कहते हैं, जो शुद्धता का ही विचार करता है उसका ही ध्यान करता है ध्यावे, शुद्धता में ही जो रमणता करता है, शुद्धता में जो स्थिर होता है उसके अमृत धारा बरसती है। पोताना एक शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु आत्मा ने जारे आश्रय ले त्याज रमे अने त्याज मग्न थई रहे तेने अमृत धारा स्वरूप वितरागता प्रकट थाय छे। अने आ वितरागता बारंग अने चौदह पूर्वनो सार छे। देखो यहाँ 12 अंग और 14 पूर्व बताए, कहीं 11 अंग और 14 पूर्व बताते, कहीं केवल 14 पूर्व की बात करते हैं, उसका अर्थ ही कही ऐसा समझ लो। जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो ही है कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। क्या कहते हैं, जिन स्वरूप पोते आत्मा छे, एक तेनो आश्रय करे तेज धर्म छे, बाकी बधु कर्म छे संसार छे। बाकी कर्म छे यानी वो जो बाकी तीन कर्म बताए ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म, तो बाकी बधु कर्म छे संसार छे। आ भगवान नी वाणी नो मर्म नाम रहस्य छे भाई। समकीर्ति मांडी ने पूर्ण मोक्ष सुधी नी बधीज दशा एक शुद्ध आत्मद्रव्य ना आश्रय छे। पण अरे जैन कुळमां एटले दिगंबरमां जन्मेलाने पण जैन तत्वनी खबर नथी। कोई एक पंडित कहता हता के दिगंबर कुळमां जन्म्या ते बधा सम्यक दृष्टि छे, हवे व्रत ने चारित्र धारण करी ले एटले बस कल्याण थई जाय। ल्यो आवी वात, हवे शुं केवुं। मोक्ष मार्ग प्रकाशकमां पंडित श्री टोडरमलजी श्वेतांबर आदिने तो अन्य मत कहेल छे। क्या कहा, पण त्या जैन कुळमां जन्मेला ने दिगंबर जैन धर्मनी बाह्य मान्यता होवा छता पण जीवने अंदर सूक्ष्म विद्यात्व रही जाय छे तेनु विस्तार थी सातमा अधिकारमां वर्णन कर्युं छे। जो जैन है जिना आज्ञा मानता है फिर भी अभी जिसके मिथ्यात्व का सूक्ष्म अंश बाकी है वो सूक्ष्म अंश भी बैरी है ऐसा कह रहे। यहाँ लिखा देखो क्या कहते हैं, कुळथी ने जन्म थी जैन पणु नथी बापू, आई तो अंतर मा अंत तत्व मा समाई जाए ते जैन छे। यानी जो आत्मा का अनुभव करे सम्यक दृष्टि होवे उसको जैन का, बाकी बारना क्रियाकांड तो बदा कर्मना काम बापू, एना थी कर्म नाम संसार निबजे धर्म नहीं। आहा मिथ्यात्व तेज मूल संसार छे, आ बहरा छोकरा बदा पर छे तेमा संसार नथी अने पोताना द्रव्य गुण में संसार नथी। द्रव्य गुण माय संसार नथी, एक समय नी पर्याय मा मिथ्यात्वादी भूल छे अने ते भूल मटाड़ता एटले स्वद्रव्यना आश्रय मोक्ष मार्ग प्रकट थाय छे। अहो दिगंबर संतो भगवान केवड़ीना केड़ायत्वे मार्ग बहु चोखो स्पष्ट करीने बतायवो छे, पण शुं थाय लोकोनो झुकाव પારમાં એટલે ક્રિયાકાંડમાં વા વિષય કશાયમાં છે એટલે તેઓ શુદ્ધ તત્વને જાણવા પ્રતિ ઉદ્યમશીલ થતા નથી. અભી દેખો યહાં પાંચ સમવાય કી બાત આઈ. અભી દેખો છે દ્રવ્યમાં કાળ લબ્ધિ છે, દ્રવ્યની પ્રત્યેક પર્યાય સ્વકાળે પ્રકટ થાય તેનું નામ કાળ લબ્ધિ છે, તે એની જન્મક્ષણ છે. પર્યાય પોતાના સ્વકાળે પ્રકટ થાય છે, દ્રવ્યની પ્રત્યેક આગે ગયા ઉપર ગયા. પર્યાય પોતાના સ્વકાળે પ્રકટ થાય છે, થાય એવો જ જ્ઞેયનો સ્વભાવ છે. શ્રી જયસેન આચાર્ય દેવે પ્રવચન સારના જ્ઞેય અધિકારને સમ્યક દર્શનનો અધિકાર કહ્યો છે. એને ઉન્હોને અલગ નામ દિયા હમને પડે ને. પ્રવચન સારમાં જયસેન આચાર્ય કી ટીકા મેં અલગ અલગ અધિકાર કે નામ હૈ. જ્ઞેયનો સ્વભાવ જ એવો છે કે જે સમયે જે પર્યાય થવાની હોય તે જ થાય, તે તેની જન્મક્ષણ છે એમ સમ્યક દ્રષ્ટિ પ્રતીતિ કરે છે. સમ્યક દર્શનનો વિષય ભલે અભેદ એક જ્ઞાયક છે, પણ જ્ઞાન પ્રદાન શૈલીથી જ્ઞાન અને જ્ઞેય બંનેની યથાર્થ પ્રતીતિને સમ્યક દર્શન કહેવામાં આવેલ છે. એ ક્યાં કહેના ચાહતે દેખો દેખો. પહેલે તો એ બાત કો સમજના ચાહતે, એ બાત બહુ બાર હોઈ આપની કે સમય સાર જો હૈ વહ દૃષ્ટિ પ્રધાન ગ્રંથ હૈ, યાને વહાં શ્રદ્ધા કો મુખ્ય કિયે હુએ સારા કથન હૈ. ઓર વહાં જો શ્રદ્ધા જો હૈ દૃષ્ટિ જિસકો કહેતે હૈ વહ તો ત્રિકાલી સ્વભાવ કે ઉપર હી કેન્દ્રિત કરે તો આગે સમ્યક રૂપ પરિણતિ ચાલુ હોગી. લેકિન પ્રવચન સાર મેં જ્ઞાન કો પ્રધાન કરતે હુએ જ્ઞાન પ્રધાન કથન શૈલી હૈ તો વહાં તો જ્ઞાન કિસકો નહીં જાનેગા, તો કહેતે કે સ્વ કો ભી જાનેગા ઓર પર કો ભી જાનેગા. લેકિન શ્રદ્ધા કેવલ સ્વ કો પકડેગી. ખ્યાલ મેં તો યહાં ક્યાં કહે રહે દેખો, એ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ નીચે સે દૂસરી તીસરી લાઈન હૈ. પણ જ્ઞાન પ્રધાન શૈલી થી જ્ઞાન અને જ્ઞેય બંનેની યથાર્થ પ્રતીતિને સમ્યક દર્શન કહેવામાં આવે છે. ઓર ઉપર ક્યાં કહેતે હૈ, ઇસી કે ઉપર કે લાઈન મેં સમ્યક દર્શનનો વિષય ભલે અભેદ એક ન્યાયક છે, યાને ઉસમેં ભેદ કરકે વગેરે ઉસકી બાત નહીં. ઓર યહાં તો જ્ઞાન ઓર જ્ઞેય દોનો કી યથાર્થ પ્રતીતિ રહે ઉસકો સમ્યક દર્શન કહા હૈ. એકલા દ્રવ્યની અભેદ દ્રષ્ટિ તે સમ્યક દર્શન એ દર્શન પ્રધાન કથન છે. અબ ફિર વાપસ જાતે હૈ ઉપર કે લાઈન મેં જ્ઞાન પ્રધાન શૈલી થી જ્ઞાન અને જ્ઞેય ઉન દોનો કી યથાર્થ પ્રતીતિ ઉસકો સમ્યક દર્શન કહા હૈ. યાની યહાં યથાર્થ પ્રતીતિ યાને યહાં યથાર્થ જ્ઞાન કે સાથ પ્રતીતિ લેના ઉસકો વહાં સમ્યક દર્શન કહેંગે. ઓર યહાં દ્રવ્ય કી અભેદ દ્રષ્ટિ વહી સમ્યક દર્શન હૈ, યે દર્શન પ્રધાન યાની યે સમય સાર કા વિષય હૈ. પ્રવચન સાર ગાથા 242 માં જ્ઞાન પ્રધાન શૈલી થી સમ્યક દર્શન ની વ્યાખ્યા કરી છે. ત્યાં કહ્યું છે કે જ્ઞેય તત્વ અને જ્ઞાતૃતત્વની યથા તથા પ્રકારે જેમ છે તેમ યથાર્થ પ્રતીતિ જેનું લક્ષણ છે તે સમ્યક દર્શન પર્યાય છે. જ્ઞેય તત્વ અને જ્ઞાતૃતત્વની તથા પ્રકારે અનુભૂતિ જેનું લક્ષણ છે તે જ્ઞાન પર્યાય છે. જ્ઞેય અને જ્ઞાતાની જે ક્રિયાંતરથી નિવૃત્તિ તેના વડે રચાતી દ્રષ્ટિ જ્ઞાતૃતત્વમાં પરિણતિ જેનું લક્ષણ છે તે ચારિત્ર પર્યાય છે. એ ક્યાં કહે રહે દેખો દેખો. અભી પ્રવચન સાર મેં તો અલગ તરીકે સે જ્ઞાન કી મુખ્યતા સે સારા કથન કરતે कहते हैं ज्ञेय तत्व जो है और ज्ञातृतत्व, ज्ञातृतत्व यानी जो ज्ञातृतत्व यानी जानन रूप जो है ज्ञायक जिसको हम कहेंगे ये जानने वाला, वो ज्ञातृ यानी ज्ञाता जिसकी शक्ति है, ज्ञातापना जिसकी शक्ति है वो ज्ञातृतत्व है। तो जेम छेतेम यथार्थ प्रतीति, ये इन दोनों की ज्ञेय तत्व की और ज्ञान तत्व की कहो या ज्ञातृतत्व की कहो, इनकी जैसी की वैसी प्रतीति जिसका लक्षण है उसको वहां सम्यक दर्शन की पर्याय कहा है। कहा प्रवचन सार गाथा 242 में। और ज्ञेय तत्व और ज्ञातृतत्व नी तथा प्रकारे अनुभूति, अनुभव करना ये ज्ञान की पर्याय है ना, तो उसको कहते हैं जेनु लक्षण छे ते ज्ञान पर्याय छे, ये सम्यक ज्ञान पर्याय। और ज्ञेय और ज्ञातानी ये क्रियांतर थी निवृत्ति, यानी अन्य क्रिया करने से वो पलट गया अपने स्वरूप में एकाग्र रह गए। तेना वड़े रचाती दृष्टि ज्ञातृतत्व में परिणति, यानी उसके इसके कारण क्या किया, जो ज्ञेय और ज्ञाता है उसकी जो क्रियांतर की जो निवृत्ति हुई है उसके द्वारा क्या हुआ कि दृष्टि ज्ञातृतत्व में परिणति रचाई गई, यानी स्वरूप में लीनता बढ़ी, अन्य क्रिया बंद हो गई और स्वरूप में एकाग्रता बढ़ी या उसमें रह गया, उसको ही कहते हैं चारित्र। जो वो आई ज्ञान प्रदान शैली थी, सम्यक दर्शन नी व्याख्या छे दृष्टि प्रधान कथन मा एकला भेद नी श्रद्धा ने सम्यक दर्शन कहू छे, श्रीमद राजचंद्र रचित आत्म सिद्धि मा अनुभव लक्ष्य प्रतीत एम शब्दों आवे छे, त्या अनुभव ते चारित्र पर्याय, लक्ष्य ते ज्ञान नी पर्याय ने प्रतीत ते श्रद्धा नी पर्याय। उन्होंने क्रम थोड़ा सा अलग लिया है। प्रवचन सारमा अनुभव ने ज्ञान पर्याय कही छे तथा शुभरागनी क्रियाती निवृत्ति अने जाननार देखनार स्वभावमा रमणता ने चारित्रनी पर्याय कही छे, नग्न दशा अने पंचमहाव्रतनी क्रिया ए कई वास्तविक चारित्र नथी। तो फिर प्रश्न साजिक है, लोगों की कन्फ्यूजन नहीं बढ़े इसलिए, तो सम्यक दर्शन बे प्रकार नु छे, तो के ना ना सम्यक दर्शन बे प्रकारे नथी, सम्यक दर्शन तो एकली निर्विकल्प प्रतीति रूप एक ज प्रकार नु छे, यानी निर्विकल्प यानी भेद किए बिना अखंड ऐसा जो अपना स्वभाव है उसकी श्रद्धा, उसको ही कहते हैं वो एक प्रकार नु छे। तेनु कथन बे प्रकारे छे, एक दर्शन प्रधान अने बीजु ज्ञान प्रधान, प्रवचन सारमा ज्ञान प्रधान निरूपण छे, समय सारमा दर्शन प्रधान निरूपण छे। जे जीव विभु एवा पोताना शुद्ध चैतन्य स्वरूप नो विश्वास प्रतीति करे करी तेमाज ठरे ते अनंत गुणनी विभूति अनंत चतुष्टयादि निज वैभव ने प्राप्त थाय छे। आ प्रमाणे अहीं विभुत्व शक्ति नु वर्णन पूरु थयुं। चलो अभी एक मिनट है। जावानी के ज्ञान कै तुझे लोकालो तो वाणी मस्तकन मो सदा देत गोरो। मिली भाई।